मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 16 अक्टूबर 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के लिए मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को चुना है और सच पूछे तो सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक अखबार के मतलब मुख पृष्ठ पर पहले पेज पर एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई दी और तस्वीर ये थी कि एक लंबे से पतले दुबले से व्यक्ति जो सूट बूट पहने हुए थे और डेफिनेटली देखने में फॉरेनर लग रहे थे, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में फॉरेनर जैसे लगते हैं, वो साइकिल अपनी खड़ी कर रहे थे एक बहुत विशाल भवन के सामने और झुके हुए उसमें कुछ ताला वाला लगा रहे होंगे, कुछ इस तरह की तस्वीर थी वो। और उस तस्वीर को देखने के बाद सामान्य रूप से ही ध्यान गया कि देखें ये है क्या। तो मित्रों, जब मैंने वो तस्वीर देखी तो उसमें जो शीर्षक था उस तस्वीर का, जो कैप्शन था, वो बड़ा मजेदार था। उसमें बताया ये गया कि ये जो व्यक्ति हैं जो साइकिल में अपने ताला लगा रहे हैं, ये बेसिकली नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब आप देखिएगा, और ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो नीदरलैंड के जो राजा हैं, है ना, वहां इसी तरह की प्रणाली है, वहां राजा होते हैं जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति होते हैं उस तरह से। तो वो राजा के महल पर गए हैं और राजा के महल पर वो ये सूचना देने के लिए गए हैं कि मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे आमंत्रित करें। जैसे हमारे यहां भी होता है ना कि प्रधानमंत्री जी फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उड भी प्रधानमंत्री कि मैं सरकार बनाने के लिए तैयार हूं, फिर राष्ट्रपति उन्हें इन्वाइट करते हैं, शपथ दिलाते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो मित्रों, इसमें मजेदार बात यह थी कि वो नीदरलैंड के होने वाले प्रधानमंत्री हैं और केवल होने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये 2010 से प्रधानमंत्री हैं, मतलब 7 साल उनको इससे पहले प्रधानमंत्री पद पर काम करते हुए हो चुके हैं और अभी भी वो प्रधानमंत्री ही हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जब हॉलैंड गए थे तो शायद मैंने अपने डेली ऑडियो में इस बात की चर्चा भी की थी, डेली ऑडियो लेक्चर में उसकी चर्चा थी कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को एक अच्छी बाइसिकल भेंट की है, एक अच्छी सी साइकिल भेंट में दी है। अब सुनकर के ये लगता है कि साइकिल भी क्या भेंट में देना, लेकिन दोस्तों इस मायने में हॉलैंड सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, देश कहना चाहिए, शहर तो नहीं कहना चाहिए। अभी लगभग तीन चार महीने पहले ही हम लोग हॉलैंड में थे, बड़ा प्यारा सा शहर, खूबसूरत शहर, बीच बीच में नहरों का शहर, बल्कि उन नहर में जाते हुए मतलब यात्रा करते हुए हम लोगों को बताया गया था कि देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस यहां पुराना रहा है, मतलब वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी ना, इंग्लैंड की और हॉलैंड की और फ्रांस की, तो उनका दफ्तर था, तो वहीं बैठ करके उन लोगों ने प्लान बनाया होगा कि अब भारत से व्यापार किया जाए। सन 1600 के आसपास की बात है, 1600 से थोड़े से बात। खैर मित्रों, वो पूरा का पूरा जो शहर है साइकिलों से खचाखच भरा हुआ, जगह जगह पर साइकिलें खड़ी हैं, जगह जगह पर साइकिलें खड़ी होती हैं, लड़के हो, लड़कियां हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, औरतें हो, सब देखे कि केवल साइकिलों से ही आ जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि वहां गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां भी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इस मायले में बहुत ही अद्भुत शहर लगा। और मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले बहुत पहले की बात है, जब मैं मणिपुर गया था, हम लोग मणिपुर गए थे, तो मणिपुर भी लगभग इसी तरह का शहर है, इसी मतलब मणिपुर के जो शहर हैं खूब वहां साइकिलें चलती हैं। मित्रों, यह इसका एक पक्ष हुआ, राइट। अब मैं इसके दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं। ये एक पक्ष तो हो गया कि चलिए इससे पर्यावरण को बहुत फायदा हो रहा है और साथ ही साथ जो साइकिल चला रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि जब प्रदूषण की हम बात करते हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो गाड़ियां ही हैं। दूसरा यह कि जो चलाने वाला है वह भी एक तरीके से शारीरिक श्रम कर रहा है, तो वह भी स्वस्थ रह रहा है, राइट। ये तो इसका एक पक्ष हो गया। लेकिन जो दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मित्रों, जो मुझे लगता है कि हम सब भारतीयों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, और वह है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे इसकी सूचना देने के लिए साइकिल पर जा रहे हैं कि मैं सरकार बनाने को तैयार हूं। और ये बीच बीच में भी कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि ये साइकिल से ही अपने दफ्तर जाते हैं। हमारे यहां क्या होता है, जब किसी को कोई सनक सवार हो गई नेता को, तो वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए साइकिल से सवार हो जाएगा और अपने सचिवालय या अपने ऑफिस चले गए और बाकायदे प्रेस को भी बुला लिया, फोटो वोटो खींचे गए, अखबारों में छपी, इसके बाद साइकिल का पता ही नहीं होता है। फिर वही पूरा का पूरा कारकेट चल रहा है, कारवां चल रहा है, आगे पीछे लाइट और फलाना फलाना फलाना। अब आप देखिए मित्रों कि हम दोनों ही देश हैं, दोनों ही देश हैं, तो क्या कारण है कि वहां साइकिल का भी उतना ही सम्मान है जितना कि किसी कार का हो सकता है, और हमारे यहां साइकिल ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही निम्न श्रेणी की सवारी है, तिरस्कृत है, और जो गाड़ियां हैं वो उच्च श्रेणी की सवारियां हैं। और गाड़ियों में ही नहीं है, बल्कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है इससे भी उनकी श्रेणियों का निर्धारण होता है। जो गाड़ी जितनी महंगी उतनी महत्वपूर्ण, उसमें बैठने वाला व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण। आप सोच करके देखिए कि कभी कभी आपको नहीं लगता है कि हम सच में, हम सब लोग कितने दयनीय हैं। हमने अपनी जो कीमत है और अपने जो मूल्यांकन का आधार है किनको बना दिया है। हमारे मूल्यांकन के आधार हमारे मकान हो गए हैं, हमारे मूल्यांकन के आधार हमारी गाड़ियां हो गई हैं, हमारे पहनावे हो गए हैं, हम किस होटल में खाना खाने जाते हैं ये सब हो गए हैं। तो व्यक्ति कहां है? क्या सच में मित्रों सोच कर देखे कि व्यक्ति का मूल्यांकन इन्हीं आधारों पर होना चाहिए? मुझे याद आ रहा है कि 1991-92 की बात थी, जब हम लोग मॉरिशस गए थे। देखिए मॉरिशस में तो बहुत से भारतीय ही गए हुए हैं वहां, और अब तो वो बहुत अच्छे पदों पर हैं, यहां तक कि सरकार के प्रमुख भी भारतवंशी वहां होते हैं। तो मित्र जब वो प्रोग्राम खत्म हो गया, तो उपराष्ट्रपति जी गए थे, और जब प्रोग्राम खत्म, जब उनके कार्यक्रम में तो सारे मिनिस्टर्स वहां के जितने भी लोग आए थे, जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वहां ऐसा नहीं हो रहा था कि वो मिनिस्टर्स को लेने के लिए फिर गाड़ियां आ रही हैं और उनमें बैठ बैठ करके जा रहे हैं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि जो बस आ रही थी, जो सिटी बस, उन बसों में मिनिस्टर जो भी नंबर उनको बस का सूट करता था उसमें वो चढ़ते थे और अपने अपने घरों को चले जाते थे। वो मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उनके पास सरकारी गाड़ियां वैसी नहीं है। हाँ, जिनके पास अपनी गाड़ी है, अगर कोई मैनेज कर सकता है तो वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे थे, लेकिन सरकारी गाड़ियां उनके पास नहीं थी। अब आप देखिए कि जब हम इस तरह की बातों को सुनते हैं तो थोड़ा सा अविश्वसनीय जैसा लगता है। फिर लगता है यार कि फिर क्या प्रधानमंत्री हुआ या क्या मंत्री हुआ, जब गाड़ी का ही सुख नहीं है, जब बंगला ही नहीं है। मित्रों, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल हमारी अपनी चेतना की देन है, केवल चेतना की देन है कि हमारी चेतना का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, चेतना कैसे सोचती है, मैं इसी संदर्भ में आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मार्क रूट, राजमहल के सामने पहुंच गए और अपनी साइकिल उन्होंने खड़ी की, और साइकिल खड़ी करने के बाद झुककर वो पिछले पहिए में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे साफ लग रहा है, लग ही रहा है, समझ लीजिए कि वो अपने साइकिल को लॉक कर रहे हैं, राइट। उस चित्र में यह भी दिया हुआ है कि फिर उस पर एक कमेंट आया है, और कमेंट ये आया कि ये नीदरलैंड है और नीदरलैंड में वहां के प्रधानमंत्री को महल के भीतर भी साइकिल लॉक करनी पड़ रही है, राइट। अब आप देखिए कि हम सोचते कैसे हैं। अब दो चीजें हैं, पहला तो यह है कि वहां कोई चीज सुरक्षित ही नहीं है, मतलब राजमहल का कैंपस भी सुरक्षित नहीं है कि, और आपको साइकिल लॉक करनी पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि उनका डिसिप्लिन देखिए, दूसरी चीज इसी का डिसिप्लिन भी हो सकता है कि वो कितने डिसिप्लिन में है कि मुझे लॉक करनी है ना, तो मुझे लॉक करनी है, चाहे फिर वो राजमहल हो, चाहे फिर वो जंगल हो, चाहे वो सुनसान सड़क हो, कोई भी जगह हो, मैं अपने डिसिप्लिन के तहत काम करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि जब हम लोग पोलैंड में गए थे, वारसा में थे, तो हम लोग जहां से लौट रहे थे, रात में काफी देरी हो गई थी और अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों की फ्लाइट थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंच जाएं तो कुछ घंटे सोने को मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि भैया तुम अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो, 70 या 80 जो भी स्पीड वहां निर्धारित है वो उस स्पीड से आ रहा था। और रात हो चुकी थी, सड़कें खूब चौड़ी सुंदर सड़कें, कोई गड्ढा नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, वो कितनी भी रफ्तार से चला सकता था, 100 की रफ्तार से तो बड़े आराम से चला सकता था, कारें तो चलती ही हैं। लेकिन मित्रों उसने स्पीड नहीं बढ़ाई और साफ साफ कह दिया कि ये कानून में नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, वी आर नॉट अलाउड, हमको इस बात की अनुमति नहीं है कि हम इससे अधिक स्पीड में गाड़ी चलाएं, मैं तो इतनी ही स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा। और मित्रों वो अपनी जो निर्धारित स्पीड थी उसी स्पीड से वो गाड़ी चलाते रहे, जबकि सुनसान सड़कें थी, रात के 12-1 बज चुके थे, कोई देखने वाला नहीं था। इसको कहा जाता है दोस्तों कि सेल्फ डिसिप्लिन। क्या हम तभी चोरी न करें जब कोई सिपाही खड़ा हो, या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, या कोई देखने वाला हो, जहां मौका मिले, अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है तो क्या सच में हमें उस समय अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं देना चाहिए? ईमानदारी तो तभी होती है जब कोई भी न देख रहा हो और खूब इत्मीनान के साथ चोरी किए जाने की पूरी गुंजाइश हो और इसके बावजूद हम चोरी न करें। और सच पूछिए तो उससे भी बड़ी बात है कि चोरी करने का विचार ही मन में न आए। यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है कि जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है, बात खत्म हो गई। जो चीज दूसरे की है वो दूसरे की है, जिस पर मेरा अपना अधिकार नहीं है उस पर मेरा अपना अधिकार है ही नहीं, उसे मैं कैसे लेने के बारे में सोच सकता हूं। तो यहां देखिए कि वो साइकिल में अपने बकायदे ताला लगा रहे हैं, मतलब ताला लगाना नहीं भूले वो, ये भी कमेंट है कि वो ताला लगाना नहीं भूले। तो ये डिसिप्लिन है कि मैं एक डिसिप्लिन के साथ रहता हूं। मुझे लगता है मित्रों कि हम सब अपने अपने लेवल पर जितना भी अधिक से अधिक इन चीजों को अपने अंदर ला सकें, लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन बना लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत से हमें जो झंझट, दिमागी झंझट होते हैं ना, जो दिमागी द्वंद होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। करूं कि ना करूं, अभी करूं कि बाद में करूं, इन सब झंझटों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये नियम है, मैं इस डिसिप्लिन में हूं और मुझे इस डिसिप्लिन का पालन करना है, तो मुझे करना ही करना है, बात खत्म हो गई, या यहां नहीं करना है तो बात खत्म हो गई, उसमें द्वंद तो कुछ है ही नहीं ना। तो दोस्तों आज एक मुझे बड़ा खूबसूरत एक सब्जेक्ट मिल गया था, तो मैंने सोचा कि ये ताजा विषय है और मैं इस ताजे विषय पर ही आप लोगों से अपने मन के कुछ जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो शेयर करूं। अब मन की बात जो है मुंह पे सच पूछे तो इतना बैठ गया है कि मन की बात निकलने निकलने को होता है, लेकिन जरा सा संभालना पड़ता है, क्योंकि आखिर में हमारे प्रधानमंत्री जी का वो टाइटल है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि मन की बात अब प्रधानमंत्री जी ही कहें तो वो ज्यादा अच्छी है। तो मित्रों अब इसी के साथ ही मैं आज के इस अपने लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं, इस आशा के साथ कि आप सब जरूर मेरे इन बातों पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद अपने अपने अंदर जितना भी ला सकते हो लाने की कोशिश भी करेंगे। तो मित्रों अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।